نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دورہ قرآن 2024 DQ 2024، آج اس کا پارہ نمبر 2 ہے. اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے، اس کا حق ادا کرنے کی خواہش دل میں رکھتے ہوئے ہم اس کو شروع کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کریں گے کہ اللہ آج کے پارے میں سے جو بھی خیر ہے نا وہ مجھے مل جائے، اور میں اور آپ اس خیر سے بہترین حصہ لینے والے بن جائیں. اور چھوٹی سی کوئی دعا کریے اپنے لیے. الحمدللہ ہم سب پہلا پارہ پڑھ چکے، ایک پارہ کوئی تھوڑا نہیں ہوتا. ہدایت کے لیے تو صرف سورۃ فاتحہ ہی کافی تھی، لیکن جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں گے، پرکھتے رہیں گے، اتنی زیادہ ہماری زندگیوں میں خیر آئے گی. تو میں چند سیکنڈ خاموش ہوں گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے یا باہر آواز نہیں آ رہی، ادھر والوں کو بھی آواز نہیں آ رہی. کیونکہ لکھیے، جب باہر کی آوازیں کم ہوتی ہیں تب ہی انسان اندر کی آواز سنتا ہے. آج کا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بہت ساری آوازوں میں گمے ہوئے ہیں، اور اس گمے ہونے کی وجہ سے ہمیں کئی دفعہ اپنے رب کی پکار یا ایھا الذین آمنو نہیں سنائی دیتی. اسی طرح سے باقی چیزیں بھی جو ہیں ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے تیری آواز آنے لگے. یاد رکھیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، اسی رب نے قرآن بھی دیا ہے. فطرت کا خالق بھی اللہ ہے، اور انسان کی عقل سمجھ بوجھ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح سے ہمارے دل دماغ کی ایک ایک چیز، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو دعا کیجیے. کیا مانگا آپ نے؟ یہ ہے آپ، یہ جو میں نے آپ کو مے بی 2 سیکنڈ کا گیپ دیا نا، یہ اس بات کے لیے دیا ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ نے کیا مانگا ہے. کسی نے بھی کچھ پرکھنا ہے نا اصل میں آپ کیا ہیں، تو وہ اس کی دعاؤں کے رنگ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعائیں کیا ہیں. کیونکہ جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، ہم اللہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی بات تو کیا سمجھنی. تو ہم اس شعور کے ساتھ آج اپنے ایمان کو چیک کیجیے. قرآن پاک کے آغاز میں آپ کا بی پی کیسا تھا؟ اور انشاءاللہ ہر پارے کے ساتھ آج ایک نیا کام آپ کو دے رہی ہوں. پارا تو الحمدللہ پورا ہو ہی جاتا ہے، وقت بھی پورا ہو جاتا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کا گھر جانے کو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا. 2-3 منٹ وہیں بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سے بات کیے خود سے باتیں کریں. کل سے آج میرے ایمان میں کیا بہتری آئی؟ جو بات میں آج سمجھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، کیا یہ بات میں اپنے اندر محسوس کرتی ہوں؟ آپ دیکھیں گے کہ ہر روز لوگ اپنا بی پی چیک کرتے ہیں. جن کو شوگر کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اللہ سب کی دور کر دے، وہ بھی اپنی شوگر بھی چیک کرتے رہتے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے آپ کی میری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، اور ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنے لیے اس طرح سے سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. تو الحمدللہ آج کا ہمارا پارا جم سے بھرا پڑا، محاسبے کے نقطے، اور وہی کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تھوڑا سا آپ کو پارے کا تعارف کرا دوں. ہر دن کی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پارے میں آنے والی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنو. اللہ کو اپنے بندوں سے، اور بندوں میں سے بھی ایمان والوں سے کتنی محبت ہے، اس کے اظہار کے لیے قرآن پاک میں 89 ٹائمز، اور یہ ہر روز جملہ آپ سنیں گے جہاں بھی یہ موضوع آئے گا، 89 ٹائم اللہ نے محبت سے پکارا، پیار سے پکارا. اس پارے میں، یعنی پارا 2 میں، آپ کو اپنے پیارے مالک کی 5 دفعہ یہ پکار آنے والی ہے. نمازیں کتنی؟ 5. پارا 2 کے شروع میں ہی لفظ ایمان اور نماز کا فرق ہم ابھی یا اس کا رب دیکھنے والے ہیں. اللہ آپ کے لیے بھی آسان کرے، میرے لیے بھی آسان کرے اس کو دیکھنا سننا. بالکل اسی طرح سے इस बारे में आयतों के नंबर चाहें तो नोट करें। आयत क्या है वो अपने वक्त पे आएगी, जहां भी हमारे सबक में आती है। सारी आयतें बकरा की हैं, क्योंकि इस पूरे पारे में हम सूरत बकरा ही करने वाले हैं। और ये पारा नंबर 2 उन कुछ पारों में से है। ये भी एक बड़ा अहम यूनिक नुक्ता बताने लगी हूँ। पारा 2 वो है जिसमें सिर्फ एक ही सूरत है। पारा 1 में भी सूरह फातिहा आई थी। पारा 3 में फिर आगे सूरह आल इमरान आएगी। आगे भी चलते जाएंगे तो वो उसको ना सोचिए। पारा 2 की ये खूबी लिख लीजिए कि इसमें सारी की सारी सूरत अल बकरा की आयतें हैं। कौन कौन सी हैं आपके रब की, आपके लिए? और मैं आज आपको एक नया अंदाज देने लगी हूँ। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ये क्या है? ये आपका मेरा क्या होता है जिसे लोग पुकारते हैं? नहीं, नाम तो मेरा ये नहीं है। पहचान, देखिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि या अय्युहल अरब, या अय्युहल अजमी, या अय्युहल गोरो, या अय्युहल कालो, या अय्युहल फुलां फुलां, नहीं कहा। ये आपके रब ने आपकी वो सिफत बयान की है जो दिल में छुपी होती है। तस्दीकुम बिल कल्ब व इकरारुम बिल लिसान व अमलुम बिल जवारे, ये 3 चीज़ें हम जोड़ लें तो ईमान की तारीफ पूरी होती है और फेथ इन एक्शन का हक अदा होने की सूरत बनती है। और इसी तरह से जितना ज़्यादा आप और मैं अपने आप को इन चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, हम समझते हैं कि हमारा रब हमें पुकारता है। अगली बात देखिए, एक वो क्या चीज़ होती है भला? मैं ज़रा आपको जगा रही हूँ, सो तो नहीं गए? क्योंकि जब सिर्फ टीचर बोलता है ना या उस्ताद ही बात करें ना, तो स्टूडेंट कई दफ़ा सो जाते हैं। वो क्या होता है जिससे लोगों को आप फिर पुकारते हैं कि वो उनका क्या बन जाता है? सोचिए, मैं सोचने की दावत दे रही हूँ। हाँ, टाइटल, पहचान, और भी एक चीज़ होती जो किसी का आदत हो जी। हाँ, ताल्लुक, तकिया कलाम, ये आपका लकब है। इल्काब, कुरान कहते सूरह हुजरात में, दूसरों को बुरे बुरे अल्काब से ना पुकारा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसकी अमली दलील है। ये आपका मेरा लकब है। अल्लाह करे कि तस्दीकुम बिल कल्ब के बाद इकरारुम बिल लिसान से अब इस दौरे कुरान के बाद ये फेथ इन एक्शन की सूरत में अमल बिल जवारिह में ढल जाए। आयतों के नंबर क्विकली बोलूँगी। 153, 172, 178, 183, 208, सारे 1 अगर शुरू के उतार दें तो दोबारा सुन लें। 53, 72, 78, 83 और उसके बाद 208। चलिए जी, अब चलते हैं पारे के थीम पे। पूरा पारा आपको क्या दे रहा है? पहले पारे के साथ पहले ज़रा 2 जुमले बोल दूँ। पहले पारे की एंड तक हमने ईमान की जो 2 शाखें कर ली वो कौन सी थी? अल्लाह पर ईमान और रसूलों पर ईमान। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं, ये 2 वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी इंसान को मालूम होनी चाहिए। यानी इस्लाम की दावत कहाँ से शुरू की जाए या कहाँ से क्या मामला किया जाएगा, जब ये 2 पता लग जाएं, यानी मन रब्बू का और मर रसूलू का जब मामला समझ आ जाता है, तो उसके बाद फिर तीसरी चीज़ क्या होती है? मकसद हयात क्या है? वट इज़ योर पर्पज़ ऑफ लाइफ? वाई अल्लाह सुबहान तआला हैज़ क्रिएटेड यू? तो आज के इस बारे में हमारा थीम है, ख़ास है तरकीब में, कौमे रसूले हाशमी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते क्या है? पूरे पारे में आज हम इसको नोट करेंगे और इसी का रब्त है नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब। अगर आप में से कोई बड़ा ही क्विक माइंडेड हो तो पहले पारे में से वो कौन सी आयत थी जिस पे बात करके बता दिया था, ये है वो वजह कि जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब के क्राइटेरियन पे पूरी नहीं उतर रही? कोई बात नहीं, आपको नहीं याद होगा, मैं बता दूंगी। 83 या 85, सोचिए। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। अगर आप बहुत माशाल्लाह अच्छे लर्नर हैं और अगर आप आगे दूसरों को सिखाने वाले हैं, तो आपके लिए तो ये बातें जो हैं ये वो कह लीजिए कि कई किताबों को पढ़ने से ज़्यादा कीमती हैं। कभी कभी एक जुमला पूरी एक किताब पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा दे देता है। तो याद रखिए, जब उम्मत आधे दीन पे अमल करेगी तो जन्नत भी नहीं मिलेगी और नसरु मिनल्लाह ही फतहुन करीब नहीं होगा। ये पहली वजह, और हर पारे में हम वजूहात लेंगे। पारा 1 से हमें जो वजूहात मिली उसमें एक वजह समझ आ गई कि आज हम आधे दीन पे अमल करते हैं। और जुमला क्या कहते हैं? दीन भी रखो तो दुनिया भी रखो, जो बिल्कुल ही ना समझ में आने वाला जुमला होता है क्योंकि हमारी सारी दुनिया दीनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतना प्यारा दिया है। आज इधर आपको अब दूसरी चीज़ नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब के वादे जो उम्मत मुस्लिमा से पूरे नहीं हो रहे। और आज से तकरीबन 100 साल पहले अलामा इकबाल कह गए कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। शिकवा और जवाब शिकवा आप में से जिसने पढ़ा है, कहते हैं अल्लाह गैरों पे गैर मुस्लिमों पे तो तेरी बड़ी रहमतें हैं, उनके अंदर तरक्की भी है, उनके मुल्क भी अच्छे, उनकी सड़कें भी साफ़ हैं, आज की ज़ुबान में वो रंग भी उनके गोरे, उनकी उम्रें भी लंबी, उधर ये भी वो भी, मच्छर भी नहीं उधर आते, मक्खियाँ भी नहीं आती, उधर कचरे के ढेर नहीं हैं, तो ये बेचारे मुसलमान क्यों क्या हो गया? सारी बर्क सारी बिजलियाँ इन पे गिरनी है। दुनिया में कहीं कोई इमारत क्या गिरती है मुसलमान का नाम आने लगता है, कहीं कुछ भी होता है तो डर लग जाता है कि ये कोई मुसलमान ही होगा जिसने ये गलत काम किया। तो आज इस बारे में से लिखिए, ये बड़ी अहम बात है। उम्मते मुस्लिमा का इस अल्लाह की मदद के वादे से महरूम होना, उसकी वजह पारे के शुरू में ही आ रही है कि वकज़ालिका जालनाकुम उम्मतं वसता। वो उम्मत जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कह गए मुझे है हुक्मे अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी से समझ लीजिए, इसी से पूरा पारा आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज तर्जुमा बहुत फास्ट पढ़ा जाएगा ताकि हम अपने गोल को अल्लाह की तौफीक और रहमत से वक्त पे पूरा कर सकें। तो लिखिए मुझे है हुक्मे अज़ां, मुझे है हुक्मे अज़ां। उम्मते मुस्लिमा के लिए ये हुक्म था। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो 1 लाख जितने भी नबी भेजे उन सब ने दुनिया को अल्लाह से जोड़ा, और उसके बाद जब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुन नबीयीन थे, जब उनका वक्त आया तो आपके प्यारों ने पूछा कि अल्लाह के नबी आपके बाद ये काम कौन करेगा, तो आपने उस पे फरमा दिया कि मेरे बाद ये काम मेरी उम्मत करेगी। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हर मुसलमान बच्चा जो किसी घर में पैदा हो रहा है असल में वो ये जिम्मेदारी लेकर आता है, लिख लीजिए, पैदाइशी तौर पे मुस्लिम्स आर ऑन जॉब। कोई मुस्लिम ले ऑफ नहीं है, कोई मुस्लिम बेरोजगार नहीं है। आप अल्लाह के काम कीजिए, रोजी रोटी उसके हाथ में, और फिर वो कितनी और क्या देगा, अभी थोड़ी देर बाद बीबी हाजरा के किस्से में पढ़ने वाले हैं। आप सहराओं में जाकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बियाबान में छोड़ आए, और वहाँ ना रोटी ना तोशा ना खाना ना पीना ना कोई टिफिन कैरियर। अल्लाह ने साबित कर दिया कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नाम पे बियाबान और जंगल में चला जाता है जहाँ पानी का कतरा नहीं, जहाँ कोई एक घास फूस नहीं उगती, अल्लाह वहाँ रिस्क के चश्मे जारी कर देता है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का बन जाता है ना अल्लाह उसका बन जाता है। आज उम्मत मुस्लिमा को इस सबक को फिर पढ़ने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आज हम देखने वाले हैं इस बारे में कि उम्मत क्या करे। तो नसरु मिनल्लाह ही वफ़तुन करीब का वादा उसके ऊपर 100% पूरा आएगा, और क्या नहीं कर रही कि नसरु मिनल्लाह ही वफ़तुन करीब का आज वादा पूरा नहीं हो रहा। आप में से मेरे में से कोई अल्लाह ताला को ब्लेम गेम नहीं खेल सकता अल्लाह के साथ कि अल्लाह सुनता ही नहीं, अल्लाह को तो हम अच्छे ही नहीं लगते जी, इधर तो बड़ा ही फेवरेट इज़्म है, जिसको जो करना होता है कर लेते हैं, हमें तो बाद में बताते नहीं, करते रहो जो मर्जी सर फोड़ते रहो। अल्लाह के वादे कल भी सच्चे थे और आज भी सच्चे हैं। आइए पिछले पारे की चंद झलकियाँ फ्यू मिनट्स में देख कर आगे चलते हैं। अभी तक क्या पढ़ा, क्योंकि देखिए पिछली सीढ़ी पे पाँव ना हो तो अगली पे पाँव नहीं रखा जाता ना। बहुत सारे हमारे साथी हैं आप में इंशाल्लाह ऐसे होंगे, और यहाँ भी मैं रोज़ देख रही हूँ कि जिनसे पहला पारा मिस हो गया। सुन लीजिए, पहली बात है आपको नहीं पता तो जिन जिनके कहने पे ये साथी आते हैं या जो सुने वो इसे पिछला पारे का लिंक उनको यूट्यूब का भेज दें। मैं कितनी मदद कर सकती हूँ आपकी? पारा नंबर 1, सूरह फातिहा हमने पूरी पढ़ी, क्या सीख लिया? इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, बंदे मोमिन की पूरी ज़िंदगी का खुलासा। फिर सूरत बकरा की 141 आयतें हमने पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बनी इसराइल के अहद शिकनियाँ दिखाई कि तुम ना करना, कह लीजिए कि पिछले लोगों की मिसालें दे के उम्मत मुस्लिमा को सही किया। फिर जादू की बातें हुई, गुस्ताखे रसूल के लिए दर्दनाक अजाब है, और ख़ास तौर पर पारे के एंड पे मस्जिदों की वीरानी की वजह फ़िरकाबाजी। जब उम्मत अल्लाह से जोड़ने से ज़्यादा अपने से जोड़ने लग जाए लोगों को, और फ़िरके और गिरोह और मसलक और जमातें अल्लाह रसूल से ज़्यादा प्यारी होने लगे कि सब कुछ जानते बूझते दिल मानने के बावजूद सिर्फ इस चीज़ को इसलिए दूसरों से शेयर ना करें कि ये हमारा ग्रोह नहीं, हमारी जमात नहीं, तो अल्लाह कहता है कि फिर मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, फिर दीनी इदारों से लोग निकलते हैं पढ़ पढ़ के, उनको सर्फ और नहव और बिलागा भी आ जाती है, उनके लिए एक दूसरे की फेक के मुकाबले भी करने आ जाते हैं, लेकिन वो अल्लाह से नहीं जुड़ते। पहले पारे से ही आपको अगर एक या दो तार जुड़ता हुआ अल्लाह ताला से महसूस हुआ है तो ये है वो कुरान जिसकी इस वक्त आम करने की ज़रूरत है। और फिर मिल्लत इब्राहिम के पूरे पारे का जो मेन थीम बना वो यही बना कि उम्मते मुस्लिमा दीन इब्राहिमी पे है, और दीन इब्राहिमी हर दौर में एक ही तरीके पे चलने का नाम था। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं अपने बाप इब्राहिम के दीन पे हूँ। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पारे के आखिरी जुमलों को देखें तो सिबगतल्लाही वमन अहसनु मिनल्लाही सिबगा में हमने एक पैगाम लिया था कि अल्लाह ने रंग की बात की, और रंग भी वो जो चढ़ाया जाता है, डाई, नॉट कलर, कौन सा नेचुरल कलर नहीं, डाई वाला, कि ये बंदगी का रंग क्या है। इस पर ये जुमला लिख लीजिए कि जिस तरह कपड़ा और रंग अलग नहीं होते, जब रंग चढ़ जाता है ना तो उतारना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा है लोग रंग काट डाल डाल के कभी कराते थे, अब तो वो वक्त ही नहीं रहे, हमारे बैक होम्स में होंगे अभी, वरना आप जो कल्चर हम देख रहे हैं वो तो एक दुपट्टे को तीन तीन दफा रंगवाती थी औरतें, फीके को, डाक पे, और एंड पे जब वो कोई और रंग ना उस पर चढ़ता कहती काला कर दो, काला दुपट्टा भी कई जोड़ों के साथ लेती हूँ। हमारी नानियाँ दादियाँ तो ऐसी थी, किफ़ायत शुआर और होम इकनॉमिक्स उनको आती थी, आज तो हर बात ही छोड़ दीजिए, उसकी तो कहानी अलग है। लेकिन जो कपड़ा रंग एक हो जाता है ना, इसी तरह इतात और आदत अलग नहीं हो सकती। क्या मतलब? इतात की आदत हो जाए, ये दुआ करिएगा। खुलुक और अखलाक में भी यही सिफत है, पुराना होना। जब हम ये कहते हैं ना रमज़ान आए हैं, है ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, तो भी ये आपकी आदत नहीं बनी, तो इतात की आदत बन जाए, ये है सिबगत अल्लाह। अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तरह से रंगवा दे। और आखिरी चीज़ पारे के तर्जमे को शुरू करने से पहले, ईमान की ताकत जो इस साल के थीम में है, इस पारे में आप क्या क्या देखने वाले हैं, मैं सिर्फ दो के नाम ले लेती हूँ। अस्हाबुल क़िबलतैन, क्या ईमान था, दौराने नमाज, लीडर कुछ कह नहीं रहा, डांट नहीं रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, देख भी नहीं रहा। देखिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन जब इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है तो इमाम को पीछे लोग देखते हैं। लिखिए आज जुमला, आज जाकर गौर कीजिए और अपने मियाँ साहब से भी पूछिएगा इसकी क्या हिकमत है कि इमाम सामने हमारे आगे होता है, हम उसको देख रहे हैं, वो हमें नहीं देख रहा, ये ईमान होता है। लीडर्स हैं कि नहीं है, बड़े सामने हैं कि नहीं है, कोई जवाबदेही करवा रहा है कि नहीं कर रहा, कोई रिपोर्टिंग देनी है कि नहीं देनी, हम तो अल्लाह के खौफ से वो काम वैसे ही करेंगे जैसे सामने करते थे। आप सब माशाल्लाह इसकी अमली तस्वीर है, मेरे सामने आप हिलते भी नहीं। लेट्स सी, मैं आज कल ना आऊँ इधर तो क्या आप ऐसे ही बैठेंगे? अगर बैठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमान पक्का हो रहा है, और अगर मैं नहीं, कौन सा टीचर हमें देख रहा है? अल्लाह फ़ोन भी कर लें, चेक भी कर लें, पाँव भी इधर कर लें, तो इसके अंदर कि अभी आपको इसकी ज़रूरत है। तो कैसे किबले बदलते हैं और नमाजों के बीच में रुख बदलते, और याद रखिए जब भी किबले बदलेंगे शोर तो उठेगा। और दूसरी जो ईमान की ताकत है वो एक कपल है, मिस्टर एंड मिसेस, और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हाजिर, जिनको हम हाजिरा कहते हैं, और एक बेबी बॉय इस्माइल है। एक घराने के ईमान की बात अभी थोड़ी देर बाद आयतों के साथ करेंगे, इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह में आयत 158। चलिए आप शऊर के साथ तर्जमा पढ़ते हैं। आप सब जो मेरे साथ बैठे होते हैं मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपना बेहतरीन कुरान साथ रखा करें, तर्जमा आप, मैं जब पढ़ूंगी तो आप अपने तर्जमे से देखा करें। हाँ, जब कोई चंद चीज़ें जो हम लोग रीडिंग मटेरियल की सूरत में आपके लिए डालते हैं तो वो देखते हो तो स्क्रीन को देखा करें। कुरान के साथ रब्त ऐसा रखिए जैसे नन्हे बच्चे के साथ माँ का होता है, वो उसको दूर से नहीं करीब से देखती है। तो आज का ये पारा सूरत बकरा की आयत 142 से 252 पे मुहित है। सूरत बकरा जो तरतीब में दूसरे नंबर की सूरह है, आइए देखते हैं। पहले फिर आपको कहूँगी अपने लिए दुआ कीजिए, बिल्कुल अंदर डूब के दुआ कीजिए। मैं एक बार फिर शऊर जगाने और आपके और अपने फोकस के लिए पढ़ूंगी खुतबा। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. رکوع نمبر 17 شروع ہوتا ہے، پارے کے شروع میں آیت نمبر 142 سے 147 ہے. ٹاپک لکھیے قبلے کی تبدیلی امت کی تبدیلی ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. عن قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ لوگ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. اللہ ہمیں بھی کر دے. کیا پتہ چلا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے نا، کہ کیا اب یہ واقعی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر کے سیریس بھی ہیں، سنجیدہ بھی ہیں، یا صرف ابھی تک ان کا دل دماغ اس کے ساتھ نہیں لگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا چیک کرتا ہے؟ یہ اصول لکھ لیجئے، جس عبادت کی عادت ہو جائے اسے چھوڑنا مشکل لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات دکھا کر نماز کے دوران قبلہ تبدیل کروایا، اور اس قبلے کی تبدیلی کے دوران یہ ثابت کروانے کے لیے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ اس کو جس طرف بھی منہ کرنے کو کہے گا، وہ بغیر ایفس اینڈ باٹس، کوشچن آنسر سیشن کے اندر ڈلے بغیر بس عمل کر لے گا. لیکن کچھ لوگ سوال جواب کریں گے، اور سیقول السفہاء میں جو لفظ سفہاء ہیں وہ کون ہیں؟ جو رسول کی پیروی سے منہ موڑے. یعنی بالکل اس آیت کے ساتھ آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ جو لوگ حقیقت میں بے وقوف ہیں، سفی ہیں، نہ سمجھ ہیں، کم عقل ہیں، وہ رسول کی اطاعت کے موقع پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. آگے فرمایا، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں. ساتھ ساتھ دعائیں کراؤں گی بیچ میں، جہاں کوئی بات ہے فوراً دعا کیجیے، اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، یہاں نوٹ کیجیے گا. اب میں آج کوئکلی جہاں بات ہوگی نا وہاں ایک بات چھوڑ کے آگے چلی جاؤں گی، گھبرائیے گا نہیں، آپ اس کو بعد میں لکھ لیجیے گا. لیکن صرف ان آیتوں کے ساتھ آپ کا رشتہ جوڑنے کے لیے یہ بات کہوں گی کہ آپ اس کو محسوس کر سکیں. یہاں لفظ ایمان نماز کے لیے آیا، یہ ہے ایمان اور نماز کا گہرا تعلق. فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. چلیے آیت 143 پڑھی. لفظ آیا امت وسط. وسط کہتے مڈ کو، ہاف ہاف وے، یعنی 50-50. بلکہ آپ اس کو دو طرح کیجئے کہ جو بالکل مڈل پورشن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. یہاں دیکھیے سورت بقرہ کی ٹوٹل آیتیں ہیں 286، جب 286 کو ہاف کرے تو 143 143 بنتا ہے، اور اسی 143 پہ لفظ آیا امت وسط. یہ ہے اعجاز القرآن. واللہ ما لہذا کلام البشر. آپ جو قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی یونیورسٹی کا سلیبس نہیں، یا کسی اور کا کہا سنا نہیں، یہ آپ کے پیارے رب کا کلام ہے. اسے امپریس ہوں، امیزڈ بائی قرآن، انسانوں سے نہیں، قرآن سے امیزڈ ہو جائیے، یہ ایک اس کی دلیل ہے. پھر آگے نبی کا ایک عمل، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو इस बात को अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है और अल्लाह ताला इन आमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। तो नोट कीजिए एक और नुक्ता, क़द नरा तकल्लुबा वजही का फिस समा गुज़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे नज़रें लगाते थे कि अल्लाह जल्दी से वो हुक्म दे दे कि जिस हुक्म से आने के बाद किबला बदल जाए। वाक़ई आपने सुना भी होगा, आप सुनते भी रहेंगे इंशाल्लाह, यहाँ उसकी बारीकियों की ज़रूरत नहीं, लेकिन याद रखिए निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये शेर तो आपने बहुत दफ़ा पढ़ा और सुना होगा, आज उसको समझ लें। इसी आयत पे है वो शेर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पे नज़रें और अल्लाह ताला को नबी सल्लम पर कितना प्यार आ रहा है, शायद इतना हमें अपने बच्चे पे भी नहीं आता होगा। और नबी ने आसमान की तरफ नज़र उठाई, ये किस बात की दलील है कि नबी को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि अल्लाह ताला आसमान पे है। ये अकीदे की और ईमान की बातें हैं, और इसको पढ़ने सुनने के बाद एक इंसान इस चीज़ पे यकीन कर लेता है कि जब भी किसी चीज़ की तलब हो तो दो रस्तों से मिलेगी, या ऊपर देखो यानी उम्मीदें अल्लाह से लगाओ, और इंसानों को करीबियों को छोड़ दो। यह भी बात आने वाली है फ़ैनी करीब आयत में 183-185 के इन बिटवीन। और दूसरा रास्ता है मांगने का, वसजुद वक्तरिब। जब कभी आपको कोई मसला पेश आए, कुरान आपको नसीहत कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, और वो क्या है कि या सर सजदे में रख दें, अल्लाह से मांगिए, और सजदा वो कैफियत है जिसमें अल्लाह के सिवा कोई नहीं दिखता, और नज़रें ऊपर निगाह बुलंद, अल्लाह आपको काफ़ी हो जाएगा। फिर आगे फरमाया, और आप अगर चाहले किताब को तमाम दलीलें दे दें लेकिन वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना आप इनके किबले को मानने वाले हैं और ना ये आपस में एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं, और अगर आप बावजूद ये कि आपके पास इल्म आ चुका है फिर भी इनकी ख्वाहिशों के पीछे लग जाएं तो बिल यकीन आप भी जालिमों में से हो जाएंगे। जिन्हें हमने किताब दी है वो तो इसे ऐसा पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाहुम। कैसे अल्लाह ह्यूमन इमोशंस को टच करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें अल्लाह सुबहान तआला सामने ले आते हैं। इनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती है, आपके रब की तरफ से ये सरासर हक है। खबरदार आप शक करने वालों में से ना होना। क्या पता चला कि जब भी क़िबले बदलेंगे, लिखिए जम, जब भी क़िबले बदलेंगे शोर उठेगा। पक्की बात है, कल वो असली तौर पे किबला बदला था, वाकया मारूफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो कुछ महीने आपने बैतुल मक़दस की तरफ मुकर के नमाज अदा की, लेकिन दिल अटका हुआ था खाना काबा से। जैसे पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद हमारे दिल बैक होम में अटके होते हैं, अपने मुल्क अपने घर अपनी सड़कें अच्छी लगती हैं। तो नबी का तो वो जन्म पल था, आपकी तो वो कहते हैं कि बॉर्न एंड रेस प्लेस मक्का थी, तो मदीना में आके चुपके चुपके अल्लाह ताला की तरफ नजरें लगाईं। अब अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के इस अमल को पसंद किया, इससे पता चलता है कि सच्ची तौहीद यही है कि सबको बीच में से निकाल कर सिर्फ रब से जुड़ जाओ। नबी ना सिर्फ ये कि खुद जुड़े बल्कि जोड़ा भी। अब आपने मदीना में आने के बाद जब कुछ अरसा बैतुल मक़दस की तरफ मुकर के नमाज पढ़ी तो वहाँ जो पहले से मजहबी हलका था वो यहूद का था, वो खुश हो गए कि देखो आज इन्होंने किबले को फॉलो किया, कल हमारा दीन भी करेंगे। इसमें बड़ा गहरा असूल है कि कहीं भी जाए ना तो एक ही दम जाकर बस अपनी लाठी ना घुमानी शुरू कर दें। एक बच्ची आपकी ससुराल में जाती है ना, आपको तो मैं अभी यही समझाऊंगी, अभी अभी तो आप कुरान पे ही है ना, वो बेटियां जो ससुराल में जाती ही पहले उनको समझती हैं, पहले देखती हैं सास कैसे बैठती है, पकाती है, खाती, कुछ महीने ज़रा उसके साथ रहे, ज़रा उनको स्टडी करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपनी मर्जियां भी कर लेंगे। फिर एक वक्त आएगा सारा घर वो अम्मा जी आपको देंगी कि बेटा आप संभालिए। लेकिन ये जो आते जाते हम ही एकदम सडन चेंज चाहते हैं ना, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। दूसरी बात जो इसमें उम्मत वसत का कॉन्सेप्ट है, ये है जी वो चीज़ जिस पे ये पारे का थीम अटका हुआ है। अगर आज उम्मत मुस्लिमा नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब को लेना चाहती है तो उसको ये काम करना पड़ेगा, और वो क्या है, उम्मत वसत बनना पड़ेगा। इसके कई मानी बताए जाते हैं क्लासों में, वसत वास्ता, आप कहते हैं ना उसके वास्ते, वसीले, बाय मीन्स ऑफ, यानी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह और नबी के बाद लोगों को मिलाने के लिए सुनहरी कड़ी है। अब देखिए ये चेन पहनते हैं ना गलों में, चेन में ये देखिए मेरी उंगलियां ऐसे कड़ियां कड़ियां मिलती है ना, लिंक्स होते हैं ना एक से एक। अब अल्लाह से बात शुरू हुई, जिब्राइल बीच में रहे, हर नबी के साथ जिब्राइल का ताल्लुक रहा। जिब्राइल ने कल्बे मोहम्मद पे डाला, कल्बे मोहम्मद से जुबाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन आया, वहां से सहाबा के कानों ने सुना, सहाबा ने वो बात अमल में कौल में ढाल ढाल कर ताबईन तबा ताबईन फिर आइमा मुहद्दिसीन तक पहुँचा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबूवत ख़त्म, ख़ातिमुन्नबीयीन थे, हमारा मुत्तफ़िका अकीदा है ये। अब वहाँ से क़यामत तक आने वाले लोग, उनको दीन कौन देगा? तो उम्मते मुस्लिमा देगी। अगर मुझे और आपको अपनी इस वैल्यू का पता चल जाए ना कि हम तो गोल्डन चेन है, गोल्ड को हम संभाल संभाल के रखते हैं, हम कभी ज़मीन पे पाँव ना रखें, हम अपना एक मिनट ना ज़ाया करें, तो उम्मते मुस्लिमा वो चोज़न नेशन है जो उम्मते दावत भी थी और उम्मते मदऊ भी है। ये वो कौम है, ये वो नेशन है जिसको अल्लाह सुबहान तआला ने लोगों की हिदायत का ज़रिया बना दिया। लिखिए उम्मते वसत कौन है जिसकी क़यामत तक के लिए जॉब पक्की हो गई, ड्यूटी पे है। वी आर ऑनलाइन, वी आर ऑन ड्यूटी एंड वी आर ऑन कॉल। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे। तो क्या पता चला, कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस समा। नबी की ये प्यारी सी कैफियत अगर ना भी बताई जाती तो भी ठीक था, लेकिन अल्लाह ने वो महबूब की अदा दिखाई कि तुम मुझे देख रहे थे आसमान पे, तो मेरे आसमान पे होने की दलील दुनिया को मिल गई। फिर भी ना माने जो तो वो ना माने, वो उनकी मर्जी। और यहाँ ज़रा एक बात नोट कीजिए, आप देख ही रहे हैं बार बार किबले का तذकरा, 5 दफ़ा किबले का तذकरा इस पहले रुकू में आया, और नमाजें कितनी है एक दिन में? 5। इस पे जाके बाद में गौर करते रहिए। ये है इजाजुल कुरान, ये हम इन डेप्थ स्टडी में रोज देख, जब देखते हैं ऐसे लगता है कि नई दुनिया है, एक नया ही कुरान है। लिखिए किबले की तब्दीली का हुक्म क्यों मिला? तो इस पे एक जुमला, हिजरते मदीना मुहाजरीन का इम्तिहान थी और वो उसमें 100 to 100 कामयाब हो गए। आप कहते हैं ना 100 out of 100, आसान काम है अपना घर छोड़ के जाना। ज़रा सोचिए, हमें आपसे कहूँ एक रात किसी को कह देना आ जाओ उधर, नहीं बड़ा मुश्किल है, क्या क्या उठाऊंगी, मुझे नींद नहीं आती, मुझे अपने तकिए के बगैर मज़ा नहीं आता, मुझे अपने बेड की आदत है, मैं सारी रात वहाँ जागती रही, मैं तो जाती नहीं, कहते हैं कई लोग। साहब करम सब छोड़ के आ गए थे, याद रखिएगा। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई, दुनी में इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। जब आप इस किस्म के पुरेसरार बन जाते हैं ना, मिस्टीरियस बन जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती। साहबे कराम ने सब छोड़कर ईमान को बचाया, और आगे जान बचाकर नहीं आए थे, ईमान बचाकर आए थे। आज हमें 20, 25, 30 साल से ये सवाल का जवाब ही नहीं मिला कि हम कहाँ रह सकते हैं, कहाँ नहीं रह सकते। अच्छा हम ये मुल्क छोड़ जाएं, अच्छा क्या करें, ये मौजू नहीं है। लेकिन यहाँ वापस आइए, हिजरत मदीना करवा के अल्लाह ने मक्का के मुसलमानों का इम्तिहान ले लिया और ग्रेजुएट भी कर दिया, यानी बोर्ड का एग्ज़ाम था, ऊपर से आया। किबले की तब्दीली नए मुसलमानों और वो जो मदीना के लोकल्स थे जिनको आज आप नेटिव्स कह लें, और आम मारूफ नाम उनका है अंसारे मदीना, उनका इम्तिहान था। और भी एक जुमला ले लें मुझसे, हिजरते मदीना सीनियर्स का इम्तिहान था, वो कामयाब हो गए क्योंकि वो तो आदी थे, और किबले की तब्दीली जूनियर्स की ट्रेनिंग भी थी और उनकी। और मैं आप सबको कहूँगी, मैं तो अटलांटा के लोगों को इस वक्त देख रही हूँ ना, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो इस दौरे कुरान की जो मुझे थोड़ी बहुत फिगर्स पता है, 200+ थी पिछले 2 हफ्ते पहले की, अब मुझे नहीं पता ना कितना मकसूद है ना, यानी मोर देन 200 लोकेशंस पे इस वक्त ये लफ्ज़ जा रहे हैं, किसी पे डायरेक्ट, किसी पे इनडायरेक्ट, कहीं इकट्ठे बैठ के, और वहाँ लोग आपकी तरह क्लासेस में सुन रहे हैं, और घरों से जो सुन रहे होते हैं कुछ आप खुद ही देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी दिखती। इस मस्जिद इस हॉल की खैर पूरे ग्लोब पे जा रही है, इस शहर से जा रही है। तो दुआ कीजिए कि रब्बी जल हाजब अल्लामीना, अल्लाह इस शहर को भी कुरान के लिए चुना रख और चुन चुन कर इसमें हमें भी चुन ले। तो जो इस वक्त मुख्तलिफ लोकेशंस पे हमारे अपने साथी बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी कुर्बानी है आप सोच सकते हैं। यानी वो पहले दिन मैं थोड़ी सी, पता नहीं मुझे खुद भी नहीं समझ आया क्या हुआ, तो कुछ लोग समझे पता नहीं क्या हुआ है, मैंने कहा अल्लाह के बंदो, कभी बस वही बात है ना, अल्लाह की बात बंदे के साथ तक ही रहे तो ठीक होती है ना। तो ये हिजरत बड़ी मुश्किल होती है, इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, समझे कि सच्चा हो रहा है। तो लिखिए, बंदा मोमिन का दिल कंपस की तरह होता है, उर्दू में इसको कहते हैं पुरकार। एक सिरा अंदर घुसा हुआ और दूसरे के साथ दायरे खींचिए, छोटा दायरा बड़ा दायरा, अगर अंदर का मरकज ना छोड़े ना, कोई दायरा किसी दूसरे के साथ जुड़ता नहीं है, ओवरराइट नहीं करता उसको या कुछ नहीं करता। बंदे मोमिन के दिल की एक धड़कन अल्लाह के साथ जुड़ी होती है, जिधर मोड़ा उधर मुड़ गए, जो कहा सो कर गए। यही पहले बारे में पढ़ के आए, इब्राहिम की खूबी थी, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। और हकीकत यह है कि जितना ज़्यादा एक इंसान को इस चीज़ का यकीन आ जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते और भी ज़्यादा खोल देता है। तो अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा बना दें, और इसलिए आपने बार बार इस पुकार को महसूस करना है जो आपका रब आपके दिलों और कानों पर डालता है। तो आइए देखिए कि इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक कौन सी आयत है। इस रुकू नंबर 17 में आयत नंबर 143, वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम इन अल्लाह बिन नासी लरऊफुर रहीम। और बेशक अल्लाह तुम्हारे ईमान ज़ाया नहीं करेगा, और बेशक अल्लाह तो अपने बंदों के साथ बड़ा ही रऊफ यानी नरमी और शफकत करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो क्या पता चला कि आपका रब मोहब्बत करने वाला, आपका रब वो है जो हकीकत में आपको बेहतरीन तरीके से आजमाने वाला है। लिखिए, नमाज और ईमान साथ साथ। साहबा को फिक्रें हो गई थी कि हमारी पिछली नमाजों का क्या होगा जो हमने इस हुक्म के नाजिल होने से पहले पढ़ ली। तो अल्लाह ताला कहते हैं, डोंट वरी, जिसने तुम्हें हुक्म दिया है उसको तुम्हारा बहुत अच्छा पता है। तो लिखिए, ईमान बगैर नमाज के ऐसे ही है जैसे चाय बगैर शक्कर के। फीकी चाय होती है ना, समझ नहीं आता लोग पीते क्यों हैं, गर्म पानी, कड़वा पानी, इससे तो बेहतर है दूध पी ले। बिल्कुल जिसने कभी मीठी चाय का मज़ा ना चखा हो उसको नहीं पता कि चीनी की क्या लज्जत होती है। बिल्कुल इसी तरह से नमाज ना पढ़ने वालों को पता ही नहीं है कि उनका ईमान फीका है। अल्लाह हमारे सारे मर्दों, औरतों, बच्चों, बड़ों को नमाजी बना दे। फिर अगली बात, फेथ इन एक्शन में से, इस रुकू में से, क़िबला मज़ाहरे इबादत का इजहार है। मज़ाहिर कहते हैं जिसको सामने रखा जाए, जैसे क़िबला की तरफ मुंह करते हैं तो खाना काबा के एक मज़र एक सींग थिंग है, हकीकत इबादत नहीं। मुश्किल जुमले को मैं आसान कर देती हूँ, और वो क्या है कि क़िबले की तरफ मुंह करना ये मकसूद नहीं है, मतलूब नहीं है। मकसूद और मतलूब क्या है कि अल्लाह के हुक्म पे उधर मुंह करके अल्लाह के बंदे बनो। क्या पता चला कुछ बातें मजीद जो इस सारे रुकू में से। नंबर एक, हमें उम्मत वसत होने का हक अदा करना है। आज उम्मत मुस्लिमा ये काम शुरू कर दे और किया हुआ है। अल्लाह रिवॉर्ड्स को सलामत रखे। जो कुफर और जहालत को चख चुका होता है ना, उसको इस दर्द का खूब अच्छी तरह से पता होता है कि हम इससे कैसे दूसरों को निकालें। तो लिहाजा जितनी दावत ज़्यादा देंगे, जितना अल्लाह रसूल की कलाम को, बात को लोगों की ज़िंदगियों में आम करते जाएंगे, नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब के हकदार आप भी होने लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर क्या पता चला कि हिदायत मांगने से मिलती है, बिन मांगे नहीं देता। पिछला जुमला भी दोहरवा देती हूँ आपको कि हिदायत की दुआ कबूल ज़रूर होती है। ये जो आज आप आकर बैठे हैं ना, पता नहीं कभी बचपन में ऐसी मुहावरतन रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ कबूल हुई हो। कभी आपको किसी ने दुआ दी, आपकी नानी ने, दादी ने, अल्लाह तुम्हें अरशों के भाग लगाए, ये आप उस दुआ से आए? या कभी किसी दिन वाकई शऊर से रो के कह दिया होगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये दुआ लगती है, हमें दुआ लगी हुई है। दुआ करिए कि हम हमेशा अपने बड़ों की और अपने प्यारों की, साथियों की दुआएं लेने वाले बन जाएं। फिर इसके बाद अल्लाह मुश्किल हुक्म देकर लोगों का ईमान चेक करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ब्लड प्रेशर लेते वक्त डॉक्टर या नर्स प्रेशर डाल डाल कर उसका बीपी चेक करते हैं, अल्लाह हमारा ईमान देख रहा होता है। असल में आप लिख सकते हैं, एक जुमला लिखना चाहें कि मुश्किलात ईमान टेस्ट करने का आला है, जैसे वो एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है ना। फिर इल्म आने के बाद ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, जिन लोगों के सामने ये सब कुछ हो रहा था सब कुछ देख जानकर भी नहीं माने, क्योंकि ये दीन उनकी ख्वाहिशों के रास्ते पर एक रुकावट बनता है। अल्लाह आज हम मुसलमानों को भी इससे बचा के रखे।